ओम शांति। तीन दिन से राजयोग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में सुबह के सत्र में तो सुन ही रहे हैं, लेकिन दिन भर में भी कहीं ना कहीं इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो मैं समझती हूँ लगभग आपको राजयोग क्या है, मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, वो सब कुछ आ गया होगा। और संत महात्माएं यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको तो ये नया सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ मैं उपस्थित हुई हूँ उसी को फिर से दोहराने के लिए और गहराई से समझने के लिए। राजयोग के अभी तक तो समय आया होगा, राजयोग के तीन कदम। सबसे पहला कदम कि स्वयं की पहचान, यथार्थ पहचान, और उसको स्वीकारते हुए, समझते हुए उसको अनुभव करना, आत्मा की निजी पहचान, वो है पहला कदम। दूसरा कदम जो कल सवेरे के सेशन में आप सभी ने सुना और समझा कि परमात्मा का यथार्थ परिचय। इतने सारे मत मतांतरे होते हुए भी सभी का कहना है भगवान एक है, परमात्मा एक है। तो एक परमात्मा का पहचान क्या है वो सबने सुना और समझा कल। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा कदम, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, जोड़ या फिर योग कैसे हम करें। राजयोग शब्द का अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें, योग शब्द का अर्थ है जोड़, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, स्नेह, संबंध। और वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। वैसे तो सभी मनुष्य आत्माएं इस संसार में योगी जरूर हैं। किसी ना किसी व्यक्ति को, वस्तु को वो जरूर याद करते आए हैं, उनके साथ कनेक्शन जोड़ते आए। क्योंकि याद करने से, किसी भी व्यक्ति वस्तु को याद करने से उनके साथ हमारा कनेक्शन मानसिक रूप से वो जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं टेलीपैथी, है ना। तो योग में या फिर कनेक्शन में तीन स्तर के चीजें हैं। सबसे पहला स्तर है स्थूल चीजों का मिलन या फिर योग। जैसे कि दूध में चीनी मिलाए और चीनी दूध में घुल जाता है, फिर उसको सेपरेट करना, अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसको कहा स्थूल चीजों का मिलन, है ना। या फिर दो कॉपर, दो वायर्स का कनेक्शन करते हैं तो वो भी स्थूल चीजों का मिलन हो जाता है। और दूसरे स्तर का मिलन है इंसान का इंसान के साथ या इंसान का वस्तु के साथ। अगर मैं कोई वस्तु को याद करती हूं, मेरे गाड़ी को याद करती हूँ या बंगले को याद करती हूँ या जगह को याद करती हूँ, सागर को याद करती हूँ, तो मेरा मिलन उस वस्तु के साथ हो जाता है। और इंसान का इंसान के साथ, जब मैं किसी को याद करती हूँ तो फिर उनके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब अचानक इसको हम याद करते हैं, मिल जाते हैं, तो कहते हैं योग था तो मिले, है ना। मेरा योग बहुत मजबूत होने के कारण से मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, वो दूसरे व्यक्ति को समझ आता है। और तीसरे लेवल का जो योग है, आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है ऊंचे स्तर का योग, जो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। ये सभी योगों से सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जो दो चीजों का मिलन होता है तो वहां कोई श्रेष्ठ नहीं बन जाता, या फिर पॉजिटिव नहीं होते। और इंसान का वस्त्र, इंसान के साथ मिलन होने से वहां भी श्रेष्ठ, हाँ कोई दूसरा व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। जो गुरु के साथ मैं कनेक्शन जोड़ती हूँ तो फिर शायद मेरा वो लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है उस परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है। उनके साथ मैं कनेक्शन जब जोड़ू, वहां कोई भी वेस्ट नहीं जाता है। जहां कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करते हैं तो पावर हाउस से हमारे घर तक वो पावर, इलेक्ट्रिसिटी आने तक बहुत कुछ बीच में लॉसेस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। तो यहां जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, वहां कोई भी लॉसेस नहीं होगा, वहां कोई वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके कारण से इस योग को राजयोग कहा। राजयोग माना सर्व योगों का राजा, राजयोग माना अपने ही कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाने वाला योग, राजयोग। क्योंकि इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल काम क्या है? कोई स्थूल चीज को कंट्रोल करना बहुत इजी है, माइक को, गाड़ी को, मशीन को कंट्रोल करना इजी है, क्योंकि हमें पता है कहाँ पॉइंट्स है, कहाँ स्विच है, कहाँ गियर है। तो वो स्थूल चीज है तो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, तो उन चीजों को कंट्रोल करना बहुत सहज लगता है। लेकिन कौन सी चीज बहुत मुश्किल है? अपने ही कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। मैं दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ क्या है, पांव कहाँ है, आंखें क्या है, कान क्या है, मुख क्या है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी इनको कंट्रोल करना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि कंट्रोलर कहीं और है ना। इन आंखों को कंट्रोल करने वाला कौन है? इन हाथों को कंट्रोल करने वाला कौन है? इन पैरों को कंट्रोल करने वाला कौन है? इस मुख को कंट्रोल करने वाला कौन है? वो है आत्मा। वो आत्मा नजर नहीं आता है, तो इसीलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल लगता है। इसीलिए कहा कि अपने आप को जानना बहुत जरूरी है इस राजयोग के अभ्यास में, और राजयोग करते करते अपने आप को और गहराई से हम समझने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। इस ना केवल स्थूल कर्मेंद्रियां लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल करना हम सीख जाते हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। क्योंकि जब हम मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना इजी हो जाता है, क्योंकि संकल्प कर्म का बीज है। कर्म करने से पहले, स्थूलता में आने से पहले वो कहाँ शुरू होता है? मन में शुरू होता है, विचारों के रूप में शुरू होता है, तो वहां हमने कंट्रोल कर लिया तो कर्म को कंट्रोल करना सहज हो जाता है। तो इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योग कहते हैं, क्योंकि इसमें परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की बात है। और इस योग का आधार क्या है, क्योंकि अलग अलग जो योग हम दुनिया में देखते हैं, अलग अलग योगों का आधार अलग अलग चीजें होती हैं। कहीं पूजा पाठ है, कहीं मूर्ति पूजा है, कहीं मंत्र जाप है, कहीं माला फेरना है, कहीं तपस्या करना है, नौधा भक्ति करना है, अलग अलग चीजें हैं। हम इसको नकारते नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छी बातें हैं। मन को नियंत्रण करना सिखाता है इन सभी प्रकार के कर्मकांड कहे या विधियां कहे। लेकिन यहां मेडिटेशन में, राजयोग में हम यहां कहते हैं इन स्थूल चीजों का आधार लेने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप ले सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन यहां लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल किसको हम करने जा रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करने जा रहे हैं। मन सूक्ष्म है, तो स्थूल चीजों से सूक्ष्म चीजों को कंट्रोल करना इतना लंबे काल के लिए ये लाभकारी नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहां हम आधार किसका हम ले रहे हैं, चार आधार है। सबसे पहला आधार है परिचय। योग का दूसरा शब्द, सहज शब्द अगर हम ये कहे, याद। किसको याद किया तो उसके साथ कनेक्शन जुटा, है ना। तो यहां याद का आधार क्या होता है, हम किसको याद करते हैं। अजनबी व्यक्तियों को हम याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका परिचय है ही नहीं हमें। जो जिनका परिचय है उनको हम याद करते हैं। तो परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है, जो हमने दो दिन से किया हुआ है, खुद का परिचय और परमात्मा का यथार्थ परिचय। तो परिचय सबसे पहला आधार है। और दूसरा आधार है संबंध। हम किसको याद करते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है। बहुत लोगों का परिचय है, लेकिन किन लोगों को हम ज्यादा याद करते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है उनको हम याद करते हैं। और तीसरा आधार है स्नेह। बहुत सारे संबंधी होंगे, लेकिन कुछ खास संबंधी होंगे या खास कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो मैं बहुत सहजता से उनको, उनके साथ मैं वार्तालाप कर सकती हूँ, बातचीत कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि स्नेह है वहां उनके साथ। तो तीसरा आधार है स्नेह। और चौथा आधार है प्राप्ति। जहां प्राप्ति है उनको हम बहुत जल्दी याद करते हैं। हाँ, कोई बिजनेसमैन है, उनसे मुझे बहुत लाभ मिल रहा है, तो हाँ मुझे उनको, मेरा, मैं उनको याद करने लगती हूँ। या फिर उनके साथ क्या बात करना है, उनके साथ मानसिक कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है, याद करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां प्राप्ति है। तो इन्हीं चार चीजों को हम अगर इस परमात्मा के साथ जोड़ करके देखें, तो और गहराई से हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता है। सबसे पहला आधार, जैसे कहा, परिचय, जो परिचय हम सबको मिल गया कि खुद का परिचय, परमात्मा का परिचय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, भ्रुकुटि के मध्य में विराजमान हूँ और चेत अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। ये है खुद का परिचय। परमात्मा का परिचय क्या है? वो भी निराकार है, सर्वशक्तिमान है, बेहद है, अथाह है, सत्यम शिवम सुंदरम है। ये है परमात्मा का परिचय जो हमने प्राप्त किया। नेक्स्ट जो कदम है, नेक्स्ट जो आधार हमने क्या इसमें कहा, संबंध। हिंदू धर्म में हम आरती करते समय हम ये कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, मात पिता बंधु सखा सब कुछ आप हो। ये कीर्तन और भजन गाते जरूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कहां तक हम उस चीज को स्वीकारे हैं कि परमात्मा हमारा मात पिता बंधु सखा सब कुछ है। वो केवल वहां मंदिर तक सीमित ना रख करके हम अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। जब हम परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं, वहां संबंध गहरा होने लगता है, कनेक्शन गहरा होने लगता है। अगर इतिहास को देखें, बड़े बड़े भक्त जनों को अगर देखते हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई एक संबंध भगवान के साथ जरूर जोड़े हैं। भक्त मीरा ने गिरिधर गोपाल के साथ प्रियतम का संबंध जोड़ा था, तो इसीलिए उन्होंने इतना गहरा अनुभव किया। जितने भी विघ्न उनके जीवन में आए, उनको सहजता से उन विघ्नों को पार किया। क्यों? क्योंकि वो संबंध परमात्मा के साथ बहुत ही गहरा, क्यों संबंध था, तो इसीलिए सब विघ्न वो पार कर सके। भक्त प्रहलाद विष्णु जी के साथ पिता के संबंध उन्होंने जोड़ा, तो जब उनके सामने वो विघ्न आया तो विष्णु जी उनको उस रीति से उनको मदद किया, तो वो विघ्न वो पार कर गए। और अर्जुन जी को देखते हैं, तो श्री कृष्ण के साथ सखा का संबंध जोड़ा था, तो समय पर उनको मदद मिली, युद्ध में उनको विजय प्राप्त कराया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी के साथ भाई का संबंध जोड़ा, जब वचीर हरण हो रहा था, भाई का पूरा जवाबदारी जिम्मेदारी उन्होंने निभाया, क्योंकि वो संबंध के वो संबंध जुड़ा था उनके साथ। तो इतिहास गवाह है, जो जो भक्त अलग अलग संबंध के साथ जुड़े हैं, उस समय परमात्मा अलग अलग रूप से जरूर उनकी मदद की है। तो इसलिए यहां हम ये कहते हैं, एक संबंध जोड़ने की बात नहीं है, हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं और सर्व संबंधों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अपना संबंध एक संबंध के साथ सीमित न रखें, क्योंकि परमात्मा अथाह है, बेहद है, जितना हम लेना चाहे हम ले सकते हैं। कहीं तो हम कहते हैं गीत में, वो भगवान आप सागर हो, आपके एक बूंद के प्यासे हैं हम। क्या हम बूंद के प्यासे हैं या सागर के प्यासे हैं? हम जब परमात्मा सागर देने के लिए तैयार है, हम बूंद से संतुष्ट क्यों हो? पूरे के पूरा अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए कहते हैं सर्व संबंधों की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जरूरी क्यों है संबंध जोड़ना, क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां संबंध है वहां फीलिंग्स, अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है। जहां संबंध नहीं है वहां भावना नहीं है। अगर आप रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो अजनबी है, मैं नहीं जानती उन लोगों को, लेकिन इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत मदद कर ली, दो चार दिन के बाद उस घटना को हम भूल भी जाते हैं, ऐसा कुछ घटना हुई थी। लेकिन अगर मैं ये एक्सीडेंट देखती हूँ अपने परिवार जनों का, अपने दोस्तों का, अगर कोई निकट संबंधी है अगर उसका एक्सीडेंट मैं देखती हूँ, तो भावनाएं जुड़ने के कारण से संबंध, ये तो मैं मदद तो जरूर करूंगी, लेकिन मदद के साथ साथ थोड़ा बहुत लगाव झुकाव भी रहेगा या कंसर्न भी रहेगा, ये व्यक्ति ठीक हुआ कि नहीं हुआ और क्या कर सकती हूँ मैं उसके लिए, वो ताकि वो ठीक हो जाए। वो अंतर क्यों है? क्योंकि एक के साथ मेरा संबंध नहीं था, दो दिन के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ मेरा संबंध होने के कारण से भावनात्मक स्तर पर मैं उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसका अंतर है। तो यहाँ भी इसीलिए हम बार बार कहते हैं परमात्मा को हम याद करते हैं तो संबंधों के साथ याद करना जरूरी है, क्योंकि वहां भावनाएं जुड़ी हुई है और भावनाएं विचारों के से भी बहुत शक्तिशाली है। भक्त जनों को आपने देखा कि भावना के कारण से, वो संबंध के कारण से बहुत बड़े बड़े विघ्नों को वो पार कर सके, क्योंकि भावना परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी और भावना के साथ साथ विश्वास जुड़ा हुआ होता है। जब मैं संबंध जोड़ती हूँ तो विश्वास जुड़ा हुआ है, जहाँ विश्वास जुड़ा हुआ है वहाँ भय नहीं होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये आप पूजा बंद नहीं करो, ये जो विधि आप कर रहे हो बंद नहीं करो, जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको बंद नहीं करो, नहीं तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। ये सही है क्या? कभी भगवान श्राप दे सकते हैं? ये सोचने की बात है। जब शारीरिक माता पिता अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते, भले बच्चे कितना भी गलत काम करे, लेकिन भले वो नाराज है बच्चों से, लेकिन कभी भी बच्चों को वो श्रापित नहीं कर सकते। जब शारीरिक माता पिता बच्चों को श्राप नहीं दे सकते, क्या वो परम पिता, सर्व आत्माओं का पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, रहम दिल, ऐसे महान परमात्मा क्या आत्माओं को श्राप कर सकते हैं, श्राप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मन का ये वहम है या फिर डराने की बात है, ये बंद ना करो ताकि फिर श्राप ना मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी श्रद्धा से हम परमात्मा को याद करते हैं मेरा लाभ है, नहीं करते हैं लाभ नहीं मिलेगा बस, लेकिन श्राप देने की बात है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ डरने की बात नहीं, या जब मैं संबंध जोड़ती हूँ वहाँ डर मिट जाता है, वहाँ विश्वास, ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो डर है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकता। तो इसीलिए जब विश्वास गहरा है, गहन है, तो वहाँ डर की बात है ही नहीं। तो इसीलिए परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ने से एक तो फीलिंग्स इतना गहरा होगा, डर मिटता जाएगा, और अलग अलग संबंधों से अलग अलग फ्लेवर की शक्तियां हमें मिलती जाती है। अगर देखा जाए परमात्मा के साथ पिता का संबंध जोड़ने से क्या होगा? पिता से क्या मिलता है? पिता से क्या मिलता है? शक्ति मिलती है और समाज में एक पहचान मिलता है, ये फलाने पिता फलाने व्यक्ति का बच्चा है या बच्ची है। समाज में पहचान मिलता है और शक्ति मिलती है। तो परमात्मा को पिता मानने से एक तो वर्षा मिलता ही है, पिता से वर्षा क्या है परमात्मा के पास? वर्षा क्या है? प्रॉपर्टी क्या है परमात्मा के साथ पास? शक्तियां, गुण और ज्ञान। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है और ज्ञानवान है, ज्ञान का सागर है। जब उनको पिता मानती हूँ, वर्षे के रूप में मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है, फिर यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। हे भगवान मुझे शांति दे दो, हे भगवान मुझे सुख दे दो, यहाँ मांगने की बात ही नहीं है। मांगने से कितना मिलता है? मांगने से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन अधिकार पूर्वक जब मैं याद करती हूँ सब कुछ मिलता है, है ना? अगर एक परिवार है, बहुत संपन्न परिवार है, उनके एक गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर है, वो ड्राइवर भले वो पूरा दिन वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन जब भी ये पूछते हैं ये गाड़ी किसकी है, वो क्या कहेगा? गाड़ी मालिक की है, मेरी गाड़ी नहीं है, मालिक की गाड़ी है, मैं चलाता हूँ। लेकिन अगर उनके जो मालिक है तो उनके 5 साल का बच्चा है, अगर उसको पूछते बेटा ये गाड़ी किसकी है, कहते मेरी गाड़ी है। उसको चलाना नहीं आता है, उसको चलाता नहीं है, फिर भी उसको ये है कि गाड़ी मेरी है। वो कहाँ से आया, कहाँ से वो आई भावना कि मेरी गाड़ी है? क्योंकि उसको पता है मेरे पिताजी की जो भी चीजें हैं वो मेरी है, है ना? तो ऐसे अगर ये मांगने, वो मालिक, मालिक कहना ठीक है परमात्मा को, लेकिन उससे भी गहरा गहरी बात ये है पिता मानना, क्योंकि ये अधिकार हो जाता है, वो पिता है, पिता के पास जो भी है वो मेरा है। वहां मांगने की जरूरत नहीं है, केवल महसूस करना है मैं आत्मा कौन हूँ और मेरे पिता कौन है। इसलिए जब गलत रीति से नाम लेते हैं ना, वो जब झगड़े होते हैं तो बोलते हैं ना कि तुमको पता है कि मेरा पिता कौन है, है ना? वो गलत बात है, गलती करके फिर रोब जताते। लेकिन ये अगर स्वमान है कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, तो वो स्वमान होने के कारण से वो शक्ति आत्मा के अंदर आ जाती है, तो फिर निशक्तता या डर की बात है ही नहीं है वहां। और दूसरा संबंध, माँ का संबंध, परमात्मा के साथ माँ का संबंध जोड़ने से क्या मिलता है? शारीरिक माँ से क्या मिलता है? जन्म मिलता है और फिर निस्वार्थ प्यार मिलता है और शांति मिलती है। बच्चा माँ के गोद में निश्चिंत होकर के वो सो जाता है, निश्चिंतता होती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मुख से अचानक कौन से शब्द निकलते हैं? ओ माँ, है ना? कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हम माँ को याद करते हैं, है ना? क्योंकि पता है वो कभी भी, पिता कभी कभी घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन माँ कभी भी बाहर नहीं निकालती, क्योंकि निस्वार्थ प्यार है माँ का। ऐसे ही मैं भले पिछले जन्मों में या इस जन्म में कितने भी पाप किए हैं, कितने भी गलत काम किए हैं, लेकिन परमात्मा के सामने जाकर के माफी मांग ले तो वो माफ कर देंगे, क्योंकि वो करुणा का सागर है। तो इसलिए माँ का संबंध जोड़ते, क्योंकि कहीं बार ये गिल्टी फीलिंग होता है ना, मैंने ये गलती कर ली, ये पाप कर्म कर लिया, कैसे मैं उसको सामना कर सकूं। नहीं, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम कभी भी वो हमको नकारता नहीं है, और ही लेकर के और ही वो माँ साफ करती है ना। तो इसीलिए वो प्रेम का संबंध, वो शांति का संबंध माँ के साथ ही हो सकता है। और तीसरा संबंध है टीचर का संबंध। टीचर का संबंध क्या है? शिक्षक का संबंध। परमात्मा ज्ञान का सागर है और टीचर का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वो ज्ञान मिलता है हमें, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कालचक्र का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, जो इन स्कूल्स और कॉलेजेस में से नहीं सिखाता है, ऐसा ज्ञान परमात्मा से प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान तलवार, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान रोशनी है। जहां रोशनी नहीं है वहां क्लैरिटी नहीं होता, भले कितने भी पीएचडी होल्डर्स क्यों ना हो, जीवन में कभी भी वो कंफ्यूज्ड रहते कौन सा मार्ग अपनाना है, कहां जाना है, क्योंकि बुद्धि में उनकी क्लैरिटी नहीं होता। जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता उसको ज्ञान रोशनी कहा जाता है, जीवन में क्लैरिटी मिल जाता है, फिर हमें समझ में आता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और चौथा संबंध है सद्गुरु का संबंध। परमात्मा को सद्गुरु हम मानते हैं तो क्या मिलता है? सद्गुरु से गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलता है। वो हम आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त करा करके ले जाने वाला है सद्गुरु, सत मार्ग दिखाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति। कैसे हम इस जंजाल से मुक्त होकर के जीवन मुक्त स्थिति का हम अनुभव करें, ऐसी देवी देवता पद हम कैसे प्राप्त करें, जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव हम कैसे करें, जैसे राजा जनक जी ने अनुभव किया था कि भले वो महलों में रहते थे लेकिन महलों में रहते हुए भी वो भिन्न थे। ऐसा ये मार्ग है, जैसे ये लोटस जो कमल पुष्प समान, किचड़े में रहते हुए, कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी हम अपना जीवन कमल पुष्प समान बहुत सुंदर कैसे बनाएं, वो सद्गुरु से मिलता है एक ज्ञान और शक्ति। केवल ज्ञान नहीं, शक्ति भी और समझ भी उस सद्गुरु से मिलता है। और पांचवा संबंध है सखा का संबंध, खुदा दोस्त कहते हैं। ये चारों ही संबंध है, परमात्मा अथॉरिटी है, हम लेने वाले हैं, लेकिन सखा का संबंध समानता का संबंध है। दिल की जो भी बात है मैं उस परमात्मा सखा के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, दिल खोल करके उनके साथ वार्तालाप कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा ट्रस्टेड फ्रेंड है। वो मेरे सीक्रेट्स किसी के साथ और के साथ वो शेयर नहीं करेगा, और उसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे से भी ज्यादा समझते हैं। और इसके कारण से मुझे जो चाहिए उस रीति से मुझे मार्गदर्शन देते हैं, वो सखा का संबंध जो अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा था। ऐसा सखा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ने से वहां फिर समानता, समानता माने डर की बात, रेस्पेक्ट है लेकिन फिर वहां डर नहीं है, दिल की कोई भी बात मैं बेझिझक मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। और दूसरी बात, ये बात नहीं होता कि वो तो सर्वश्रेष्ठ है, पूरे संसार का पिता है, संसार के भगवान है, क्या मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो एक व्यक्ति हूँ, मैं तो साधारण हूँ, क्या वो परमात्मा मुझे मदद करेंगे, ये प्रश्न कई बार उठता है। तो यहां जब हम दोस्त का संबंध जोड़ते हैं ये प्रश्न मिट जाता है, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे 24/7 हर क्षण हर सेकेंड में जब मेरे लिए वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कनेक्ट करने की क्या बात, कौन सी बात को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, केवल एक याद की जरूरत है, परमात्मा को याद करते ही वो कनेक्शन जुट जाता है। तो इसीलिए वो दोस्त के संबंध से वो जो भय होता है ना कि पता नहीं मेरी मदद होगी कि नहीं होगी, मदद करेंगे कि नहीं होंगे, तो वो मिट जाता है, हमेशा मेरे लिए वो अवेलेबल रहेंगे। और नेक्स्ट संबंध है परमात्मा मेरे स्वामी साजन, जैसे भक्त मीरा ने श्री कृष्ण जी को याद किया था, वो संबंध जोड़ा था, ऐसे जो गिरिधर गोपाल को याद किया था, ऐसे परमात्मा मेरे स्वामी और साजन है, उस रीति से याद करने से प्यार गहरा हो जाता है, अटूट हो जाता है, और वहां एक हम आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, वहां कोई दूरियां नहीं बनती, हमारे बीच में कोई आने की संभावना ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है, शिव और शक्ति कंबाइंड है, परमात्मा शिव और हम आत्माएं शक्तियां। तो इसीलिए हम जब कंबाइंड हो जाते हैं तो वहां शिव शक्ति की ये जो ऊर्जा है वहां उत्पन्न हो जाता है, वहां कोई भी असंभव बात नहीं होता क्योंकि हम कंबाइंड हैं। इसलिए यहां कहते हैं शक्ति का अस्तित्व शिव के बिना कुछ नहीं है, बेशक शिव के बिना मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, और शिव शक्ति के बिना कुछ काम नहीं करते। तो इसीलिए कंबाइंड रूप का जितना हम अभ्यास करते हैं तो वहां वो शक्ति का वो जो ऊर्जा है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन संबंधों से याद करने से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभूतियां हम अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। ये हुआ संबंध, सबसे पहला था कि परिचय, दूसरा है संबंध, अब तीसरा है स्नेह। इसी संबंध को गहराई से समय देकर के जितना जितना मैं अनुभव करती जाऊंगी उसकी गहराई का अनुभव करती जाऊंगी, स्नेह बढ़ता जाएगा परमात्मा के साथ। परमात्मा को तो प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, वो तो निरंतर दे ही रहे हैं, लेकिन मेरा स्नेह परमात्मा के साथ कैसे बढ़ाएं? तो एक एक संबंध के साथ गहराई से अनुभव करते करते महसूस, अनुभव करना माना महसूस करना, हर संबंध को महसूस जितना हम करते जाएंगे स्नेह गहरा होता जाएगा। ऐसे अगर सागर अगर देखे, सागर में ऊपर ऊपर से, जैसे सागर के किनारे में अगर हम नहाने जाएं, जैसे उसके साथ कनेक्शन अगर जोड़ते हैं, परिचय जब लेते हैं तो ऊपर ऊपर से ही याद करते हैं, लेकिन संबंध जोड़ते हैं तो सर्फिंग करना या फिर उसके साथ ऊपर ऊपर से जो सागर में खेलते हैं वैसा होता है, लेकिन स्नेह में डूब जाना माना इसका मतलब है सागर के तले में चले जाना। सागर के ऊपर में तो बहुत सारे लहरें हैं, बहुत सारे वेव्स हैं, बहुत सारे ऊपर नीचे हैं, लेकिन सागर के तले में जब जाते हैं वहां एकदम शांति है और एकदम एक प्रकार से सुगुन है, शांति है, स्थिरता है। ऐसे ही मतलब परिचय और संबंध में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्नेह में जब डूब जाते हैं वहां स्थिरता है, वहां एकाग्रता है। इसीलिए जब नए नए जब शादी कर हुए होते हैं ना, तो उनके बीच में पति पत्नी के बीच में गहरा प्यार होता है। उस समय वो पत्नी कहीं बैठी हुई बहुत प्यार से याद कर रही है, वो कुछ सीन्स याद आ रहे हैं, बहुत याद आ रहे हैं अपने पति। उस कमरे में कोई आया गया पता ही नहीं है, कोई आया गया कुछ करके गया पता ही नहीं चलता। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि अपने ही यादों में वो व्यक्ति डूबी हुई थी, प्यार में वो मग्न थी, एकाग्र थी। जब ये एकाग्रता, जब हम स्नेह में डूब जाते हैं, वहां हम कोई भी उलझने हैं, कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंसेस है उसका परवाह ही नहीं होता। भले भी बाजार में भी हम परमात्मा के प्यार में डूबे हुए होते होंगे, लेकिन बाजार के शोर शराबा हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम अपने ही स्नेह में परमात्मा की याद में डूबे हुए हैं। बाहर की जो परिस्थितियां हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता जब हम प्यार में डूबे हुए हैं परमात्मा के। ये है स्नेह का ताकत, इसमें एकाग्रता आती है। और लास्ट है प्राप्तियां। जब हम स्नेह में डूब जाते, एकाग्रता हो आ जाती है, तब हम प्राप्ति अनुभव करते हैं। एकाग्रता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कागज को सूरज के नीचे हजारों सालों तक भी रखे वो जलता नहीं है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रख करके अगर फोकल पॉइंट पर अगर उस कागज को रखा तो 2 मिनट में वो कागज जल जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फोकस हो गया, सारे सूरज की किरणें एक पॉइंट पर फोकस होना शुरू हो गया। उस फोकस पर, उस फोकल पॉइंट पर कोई कागज रखा, वो फोकस के कारण से वो जल जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी रोशनी, उसका हीट ज्यादा होने के कारण से वो जल जाता है। इसलिए ऊपर ऊपर से हजारों सालों तक भले परमात्मा को याद करते रहे, संस्कारों में परिवर्तन कभी नहीं आएगा, कर्मों में परिवर्तन कभी नहीं आएगा, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट भी उस एकाग्रता से, उस गहन स्नेह के साथ जब मैं परमात्मा को याद करती हूँ, वो फिर फोकल पॉइंट का काम करता है, अग्नि का काम करता है, मेरे पुराने जो पाप कर्म है उससे भस्म हो जाता है। ये है ताकत राजयोग का। तो इस एकाग्रता के साथ जब मैं याद करती हूँ, जो प्राप्तियां ही प्राप्तियां है, परमात्मा के पास अखुट खजाने हैं, वो खजाना खुला हुआ है, उन खजानों पर कोई ताला चाबी नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है, मैं जब चाहूं जितना चाहूं वहां से मैं ले सकती हूं। केवल एक संकल्प, एक विचार, एक कनेक्शन जोड़ने से सब प्राप्तियां मैं अनुभव कर सकती हूं। इसीलिए इसको सहज राजयोग कहते हैं। सहज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी शारीरिक तकलीफें नहीं है, एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो जो सोबजी करना है तो आपके जीवन में नियम और संयम लाने के लिए भले कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है, लेकिन यहाँ स्नेह की बात है, फोकस करने की बात है, एकाग्र करने की बात है। तो इसीलिए जब इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, किस विधि से करना है, स्थूल विधि हम देख लेते हैं पहले, फिर सूक्ष्म विधि हम देख लेते हैं। स्थूल विधि ये है कि आप आराम से कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे पट पे बैठना है, चाहे कुर्सी पर बैठना है, क्योंकि शारीरिक तकलीफ इसमें नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक तकलीफ अगर देते हैं तो बुद्धि वहां जाता है। कहीं भी मेरे टांगों में दर्द है, अगर हम कहें कि नहीं आपको पट पे ही बैठना है, तो फिर पट पे आप जबरदस्ती बैठ तो जाएंगे, लेकिन टांगों में दर्द है तो आप परमात्मा में एकाग्र नहीं कर सकते, लेकिन टांगों में बार बार जाएगा, मेरा दर्द है, मेरा दर्द है, मेरा दर्द है। तो इसीलिए हम कहते हैं जहां आपको कंफर्टेबल है वहां आप बैठ सकते हैं फिजिकली। और फिर दूसरी बात यह है कि हाँ, कंफर्टेबली बैठना ये मतलब ये नहीं है कि आराम से लेट जाए, अलर्ट भी रहना पड़ेगा, आपका बैकबोन स्ट्रेट रहे, ताकि फिर अलर्ट भी रहे कि एकाग्रता, क्योंकि जब ऊर्जा आता है तो फिर हम अलर्ट रहेंगे, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा, उसको हम स्वीकार सकते हैं, उसको संचार हमारा हमारे शरीर में आत्मा में वो सहजता से वो संचार हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आंखों को, यहां हम कहते हैं ओपन आई मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए आपको आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इस राजयोग में कर्म योग भी समाया हुआ है। कर्म योग माना भले आप सुबह उठ करके आधा घंटा, 20 मिनट, एक घंटा, जितना भी आपके पास समय है, बैठ करके आप राज्यों का अभ्यास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे दिन में कर्म करते समय भी आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर जहां भी बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा है, अब जहां बुद्धि का प्रयोग हो रहा है वहां एकाग्रता वहां होना जरूरी होता है, लेकिन कहीं आप चल के जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहे हैं, जब बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे महिलाएं भोजन बना रहे हैं लेकिन किसी को भी याद भी कर सकते है ना, ड्राइव कर रहे हैं किसको भी याद कर रहे है ना, तो ऐसे परमात्मा को याद करना, जब हम कर्म करते समय परमात्मा को याद कर सके करे, उसको हम कहते हैं कर्म योग। और कर्म योग आंख बंद करके हम नहीं कर सकते, कर्म करने के लिए आंखों को खुला रखना जरूरी होता है। तो इसीलिए ये लिमिटेशन ना डाले कि मेडिटेशन करने के लिए मुझे आंख बंद करना पड़ेगा, नहीं। इसीलिए अभ्यास ही खुले आंखों से करते हैं तो फिर कर्म योग करना इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? एकाग्रता की बात है। जो बिगिनर्स हैं, जब शुरू कर रहे हैं, तो आंखें खुला रख करके मेडिटेशन करने के लिए उनको दिक्कत होता है, क्योंकि फोकस नहीं कर पाते हैं, एकाग्र नहीं कर पाते अपने मन और बुद्धि को। तो इसलिए हम कहते हैं आंखों को पूरा खुला नहीं रखना है, हाफ ओपन। जब भी योगियों के जो चित्र देखे हैं उनके आंख कैसे हैं, महात्मा बुद्ध के, महावीर साहब के, या फिर गुरु नानक साहब के, जो भी है, जो भी चाहे विवेकानंद जी के हैं, जो भी तपस्या में बैठे हुए हैं, उनके आंख आधा खुला है ना। तो आधा खुला रखना होगा, पूरा खुल के रखने की जरूरत नहीं है। आधा खुला माना इसका मतलब ये है मेरा फोकस पूरा अंदर है, मेरे भ्रुकुटी के मध्य में है मेरा फोकस, मन और बुद्धि वहां एकाग्र है, भले इन आंखों से मुझे नजर आ रहा है लेकिन ध्यान नहीं है। क्योंकि जब स्नेह में डूबे हुए हैं, आंख तो खुले हैं लेकिन उन पर अटेंशन नहीं है। ऐसे ही कमल फूल समान बनना है, माना सब कुछ है लेकिन डिटैच्ड है। ऐसे ही देख रहे हैं लेकिन पूरा ध्यान मेरा खुद पर है और परमात्मा पर है। तो और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको बीच बीच में बंद भी करना है तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि लंबे काल तक आप आंखों को बंद न रखें। क्यों? क्योंकि आंखों को लंबे काल तक आप बंद रखेंगे, 5 मिनट 10 मिनट तक आप बंद रखेंगे, भले इनिशियली स्टार्टिंग में आप फोकस कर सकते हैं लेकिन बाद में मन भटकना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं खुले आंखों से ज्यादा बाहर के बारे में सोच नहीं सकते, यहां के ही बारे में सोच सकते हैं, सोचेंगे, लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं ऑटोमेटिकली मन इस हॉल से बाहर चला जाता है। बंद आंखों से बाहर जाना इजी हो जाता है। इसलिए अभ्यास ना होने के कारण से बहुत जल्दी अपने परिवारजनों के पास, जहां हम पास्ट में चले जाते हैं, तो इसीलिए लंबे काल तक वो आंख बंद नहीं करने का सजेशन है। भले बंद करना भी है 1-2 सेकंड के लिए, फिर खोल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। और सूक्ष्मता में मन में क्या सोचना है, राज्यों का मतलब ये नहीं है कि मन को पूरा नील कर देना, अमन कर देना, या फिर मन में कुछ न सोचना, ये मेडिटेशन नहीं है। क्यों? मेडिटेशन क्योंकि मन का काम ही है सोचना। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, केवल उन विचारों को एक पॉजिटिव दिशा में लेके आते हैं, खुद के आत्मा के बारे में, आत्मचिंतन के बारे में हम लेके आते हैं उस चिंतन को। इसे कुछ ना करना उसमें कोई ताकत नहीं है। अगर मान लीजिए अगर केवल आप सो रहे हैं तो ठीक है, जब तक शरीर को रेस्ट मिलना चाहिए 8 घंटा 10 घंटा आप सो लिए, ठीक है रेस्ट मिल गया, उसके बाद भी आप सोएंगे तो वो वेस्ट जाता है, उसमें कोई मतलब क्रिएटिविटी नहीं है या कुछ मतलब कुछ मिल नहीं रहा है, है ना। तो ऐसे ही मन को न सोचने से कुछ मिलता नहीं है। पॉजिटिव कर्म करते जाएंगे तो कुछ मिलता है ना। तो ऐसे ही आत्मा विचारों को एक स्वचिंतन में, परमात्मा चिंतन के तरफ विचारों को ले जाने की बात है। तो ये मन से हम विचार सागर मंथन करते हैं, स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन करना शुरू करते हैं, क्योंकि मन या विचार बीज है कर्म का, मन को फोकस करना। और दूसरी बात है बुद्धि को यूज करना, क्योंकि सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए हम मेडिटेशन करते हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि और संस्कार है। मन और बुद्धि के फोकस से जब हम मेडिटेशन करते हैं फिर संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू होता है ना। मन को एकाग्र करना कैसे पता चला, क्योंकि स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन से मन को एकाग्र करना है। और बुद्धि को कैसे एकाग्र करना है, बुद्धि किसको कहते हैं, बुद्धि तीसरे आंख है। तो बुद्धि तीसरे आंख क्यों कहते हैं बुद्धि को, क्योंकि हम बुद्धि से देख सकते हैं। जैसे यहां बैठे बैठे अगर आपको कहे आपके घरों घर के लिविंग रूम में चले जाएं, या फिर आपके आश्रम के आंगन में चले जाएं, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, अपने आप को वहां पा सकते हैं। अगर आपको कहे अपने आप को सागर के किनारे में देखें, बहुत सुंदर बड़ा सागर है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, बेहद का सागर है, बहुत सुंदर लग रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, तो इन आंख से देख रहे हैं ना। भले आप यहाँ हार्मनी हॉल में बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं सागर, सनसेट, बहुत खूबसूरती और ये लाल लाल आकाश, सब कुछ देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? बुद्धि के आंख से आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही मेडिटेशन में भी इस बुद्धि को हम यूज करेंगे विजुलाइजेशन में। जब मैं हम ये कहते हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं कि मैं आत्मा भ्रुकुटि के बीच में विराजमान हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, एक नक्षत्र के मिसल यहाँ बैठी हुई हूँ, केवल सोच नहीं, वो तो मन हो गया, बुद्धि से हम क्या कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं कि मैं सचमुच यहाँ एक सितारा बीच में, एक स्कल के बीच में, पूरे स्कल के बीच में एक सितारा है, बहुत सुंदर रीति से वो चमक रहा है। आप देख पा रहे हैं, अपने आप को देखे कि मैं सचमुच एक आत्मा यहां बीच में बैठी हुई हूं और बहुत सुंदर रीति से चमक रही हूं, है ना? तो ये है बुद्धि का प्रयोग करना, महसूस करना, है ना? तो महसूस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए सोचना और फिर देखना, ये महसूस करना हो गया। और तीसरी बात ये है मेडिटेशन में जो हम यूज करते हैं, वो है फील करना। फील करना माना, जैसे मैं कहती हूं कि मैं आत्मा शांति का सागर हूं, शांति का स्वरूप हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, क्या मैं उस शांति को महसूस कर रही हूं? मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, उस शक्ति को महसूस करना, ये बात है। ये तीनों शक्तियों को हम यूज करते हुए हम मेडिटेशन करते हैं, मन से स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, बुद्धि से विजुलाइजेशन, चित्रीकरण, और फिर तीसरी बात है महसूस करना, फील करना। फील करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप आपको अगर कहे कि आप 2 मिनट में आप ये विजुलाइज करें, आपके हाथ में एक नींबू है, नींबू है, नींबू आ गया आपके हाथ में, नींबू को काटे और उस नींबू को चूसना शुरू करें, नींबू को चूसना शुरू करें, क्या हुआ, क्या हुआ, मुंह में क्या हुआ, सलाइवा तो क्रिएट हुआ ना थोड़ा बहुत, है ना? ये है मैजिक विजुलाइजेशन और महसूस करने की शक्ति का, है ना? ये कोई खेल नहीं है। माना आपको लगता है कि ये बहन जी क्या कह रहे हैं, ये से हो जाएगा? बहुत, परमात्मा से मिलना तो बहुत बड़ी बात है, तो इससे क्या हो जाएगा? ये हो सकता है, केवल महसूस करने की बात है। चलिए आप, भले आपको डाउट होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपको डाउट भले हो, लेकिन आपके ठीक वो उन डाउट्स को थोड़ा सा बाजू में रख करके, माइंड को ओपन रख करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है? चलो हम महसूस करेंगे परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का, या फिर राज्यों के अध्यास का। आपके मन के दरवाजे खोल करके, कोई भी इनिबिशन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी ये हो, थोड़ा सा बाजू में रख करके थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर ले। जितना जितना आप अनुभव करते जाएंगे ना, जितना जितना रिजल्ट मिलता जाएगा, फिर उसमें आपको विश्वास बढ़ता जाएगा, है ना? रिजल्ट मिलने से आपको विश्वास बढ़ेगा ना, तो इसीलिए लेकिन रिजल्ट मिलने के लिए क्या चाहिए? विधि यथार्थ चाहिए। विधि में गड़बड़ है तो फिर रिजल्ट में गड़बड़ होगा। फिर कहेंगे मैं तो राज्यों का अभ्यास करता रहा इतने सालों तक, इतने महीनों तक, फिर भी कुछ अनुभव नहीं हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विधि में कुछ न कुछ सही नहीं था, तो इसलिए अनुभव और परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए थोड़े समय के लिए अभी अभ्यास करते हैं। अभी मैं प्रश्नों को नहीं लूंगी, क्योंकि प्रश्नों को लेंगे तो जरूर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन इस मंच से अभी प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे। केवल एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मन को एकदम शांत रखे, डाउट ना रखे कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, हमने बहुत कुछ और सुना था, ये था वो था, जो भी पढ़े हैं समझे हैं पास्ट में, भले ठीक है, हम ये नहीं कह रहे गलत है, थोड़ा वो भी राइट होगा, लेकिन उसको थोड़े समय के लिए बाजू में रख लीजिए और पूरी तरह जो हम यहां से अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह एकाग्रता से उस पर ध्यान दे करके अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। आसपास के वातावरण से सबसे पहली बात है शारीरिक पोस्चर, सीधा बैठे, चाहे आप सुखासन पे बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, अगर कुर्सी पर बैठे हैं और सुखासन पे में नहीं बैठ सकते हैं तो फिर पैर सीधा, क्रॉस लेग्स नहीं, सीधा पैर जमीन पर और बैकबोन सीधा। कंफर्टेबल भी है लेकिन अलर्ट भी है, सिर भी सीधा रखें। और अभी क्या देखना है इन आंखों से? अगर हम कहें कि एक कोई भी एक पॉइंट पर अपने आंखों को स्थिर रखे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से मैं कुछ ले रही हूं, पूरा फोकस मुझे वहां करना है, नहीं, आंखों को केवल एक जगह पर स्थिर रखना है ताकि फिर मन को एकाग्र करने में उसकी मदद मिले। क्योंकि आंखों को इधर उधर हम करते हैं, इधर उधर देखेंगे तो मन भी चंचल होगा, आंखों की चंचलता से मन चंचल हो जाता है, दोनों कनेक्टेड है। आंखों की स्थिरता से मन स्थिर हो जाएगा, इसलिए कोई भी एक पॉइंट पर आप आंखों को स्थिर रखेंगे। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप सोचते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे और महसूस करते जाएंगे, तीनों साथ साथ चलेगा, सोचना, विजुलाइज करना और फील करना, महसूस करना, तीनों साथ साथ चलेंगे। आसपास की दुनिया से, वातावरण से मन बुद्धि को किनारा करें, विड्रॉ करें, और भ्रुकुटि के मध्य में केंद्रित करें। वहां देखे अपने आप को, ब्रेन के बीचों बीच एक चमकता हुआ अजब सितारा, अजर अमर अविनाशी हो, चैतन्य शक्ति हो, वो आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, चैतन्य शक्ति हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है जिसको पहन कर, जिसको धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर कर्म करती हूं। इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली मैं आत्मा हूं। ये शरीर जड़ है लेकिन मैं आत्मा चैतन्य हूं, लिविंग हूं। मुझ आत्मा से शांति के किरणें पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरे ब्रेन में शांति के प्रकंपन फैल रहा है। धीरे धीरे नीचे की तरफ कंधों में, पेट में, भुजाओं में, टांगों में शांति के प्रकंपन फैल रहा है क्योंकि मैं आत्मा कंट्रोलर हूं, राजा हूं। जैसा मैं सोचती हूं उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं पूरे शरीर में शांति के प्रकंपन, अंग अंग शीतल और शांत होता जा रहा है। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा देख रही हूं। आंखों द्वारा शांति के प्रकंपन फैला रही हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर कानून द्वारा सुनती हूं। कान मेरे स्पीकर्स हैं। लेकिन सुनने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर मुख द्वारा बोल रही हूं। मुख मेरा माइक है, लेकिन बोलने वाली मैं आत्मा हूं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं। करने वाली मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चलिए मन और बुद्धि से ऊपर के ओर चले, जहां परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, जो मेरा घर, मुझ आत्मा का घर, मेरे परमात्मा का घर है। जहां चारों तरफ अखंड शांति है। शांति धाम स्वर्णिम लाल प्रकाशित दुनिया। जैसे मैं आत्मा ज्योति हूं, ऐसे अनेक अनेक ज्योति बिंदु आत्माओं को देख रही हूं। उसमें से एक महाज्योति सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर, शक्तियों का भंडार मेरे सामने है। वो भी मेरे जैसे अति सूक्ष्म ज्योति है, लेकिन शक्तियों में सागर है, अथाह है, बेहद है। वो परमात्मा मेरे पिता है। मैं आत्मा उस परमात्मा के अति प्रिय संतान हूं। उसके सानिध्य का आनंद उठाएं।
शक्तियों का अनुभव करें। परमात्मा देह का सागर है, देह का भंडार है। करुणा का सागर है, मैं आत्मा परमात्मा के निस्वार्थ स्नेह को महसूस कर रही हूं। उससे भरती जा रही हूं अपने आप को। इस प्रेम में अथाह शक्ति है। मैं अपने सारे बोझ, भारीपन सब कुछ परमात्मा को सौंप रही हूं, मेरे पिता को सौंप रही हूं। मेरे पिता कह रहे हैं, बच्चे मैं बैठा हूं ना, सब बोझ मुझे दे दो, पूर्व जन्मों के, इस जन्म के जो भी दुख, दर्द, टेंशन, भारीपन सब कुछ परमात्मा को सौंप रही, पिता को सौंप रही हूं। निश्चिंत होती जा रही हूं कि मुझे विश्वास है परमात्मा मेरा साथी है। जब साथी हो भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। मैं आत्मा शक्ति, मेरे पिता शिव, कंबाइन महसूस करें आत्मा और परमात्मा कंबाइन। कोई भी दूरियां नहीं, शिव शक्ति है, शिव में जो भी गुण शक्ति ज्ञान है सब कुछ मुझ में ट्रांसफर होता जा रहा है। मैं पवित्र बनती जा रही हूं, शुद्ध बनती जा रही हूं, श्रेष्ठ बनती जा रही हूं। सब कुछ जो नकारात्मक और व्यर्थ है सब कुछ धुलता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। मुझ आत्मा के अंदर अलौकिक शक्ति बढ़ता जा रहा है। अपने में इन सभी खजानों को भरते हुए पुनः वापस स्थूल संसार में, स्थूल शरीर में अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। लेकिन निरंतर मैं अपने परमात्मा पिता के साथ कनेक्टेड हूँ, निरंतर उनसे ले रही हूँ और संसार को दे रही हूँ। एनर्जी फ्लो ऊपर से आ रहा है, मुझसे संसार में फैल रहा है। ताकि इस संसार में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना कर सके, हर आत्मा के परिवर्तन के प्रेरणा स्रोत के साथ कनेक्शन जोड़ सके। ओम।